संयुक्त राष्ट्र रेडियो से साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं महबूब खान। 1 नवंबर 2019 के इस बुलेटिन में शामिल है, सुलह सफाई और मध्यस्थता ही है संघर्ष समाप्त करके शांति स्थापना का एक सशक्त माध्यम, कहा यूएन प्रमुख ने। मानवाधिकार उच्चायुक्त का आग्रह, भारत प्रशासित कश्मीर में स्थिति को मुक्त करके लोगों के मानवाधिकार बहाल किए जाए। हिंसक संघर्ष में यौन हिंसा का अंत करने के प्रयासों का एक दशक, जीवित बचे पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया एक वैश्विक कोष। इनके अलावा जलवायु परिवर्तन पर ताज़ा रिपोर्ट तैयार करने वालों में शामिल डॉक्टर अंजल प्रकाश से एक खास इंटरव्यू, और महाराष्ट्र में महिलाएं कैसे पूरे कर रही हैं अपने सपने, होगी एक खास रिपोर्ट। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप मल्टीमीडिया सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, पता है news.un.org/hi। और हाँ, एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल फोन में भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसमें बाईं तरफ लिस्ट में आपको हिंदी वेबसाइट भी नजर आएगी। इसके अलावा आप गूगल में यूएन न्यूज हिंदी ऐप भी सर्च करें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने मध्यस्थता को हिंसक संघर्ष समाप्त करने के महत्वपूर्ण जरियों में से एक बताया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में आयोजित 6वें इस्तांबुल मध्यस्थता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव ने कहा कि सीरिया में परस्पर विरोधी पक्षों का आमने सामने बैठकर वार्ता में शामिल होना मध्यस्थता की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने मध्यस्थता और संवाद के सकारात्मक नतीजों को साझा करते हुए बताया,
As the tragedy in Syria grins on for an eighth year, with civilians paying the highest price,
यूएन महासचिव कह रहे थे कि सीरिया में 8 साल से जारी क्रूर गृह युद्ध के बाद सीरियाई नेताओं की जिनेवा में बातचीत का होना प्रगति का परिचायक है। यह स्पष्टता से हिंसक संघर्षों के राजनीतिक समाधान तलाश करने की अहमियत को दर्शाता है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द।
यूएन प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि राजनीतिक समाधान ढूंढने और सीरियाई जनता के जीवन में त्रासदीपूर्ण अध्याय का अंत करने की दिशा में ये पहला वास्तविक कदम है। इससे सभी सीरियाई नागरिकों के स्वेच्छा से अपने देश सुरक्षित लौटने की संभावना को बल मिलेगा। फिलहाल 25 करोड़ से ज्यादा सीरियाई नागरिकों को मदद की आवश्यकता है। 66 लाख लोग घरेलू तौर पर विस्थापित हैं और 30 लाख उन इलाकों में फंसे हैं जहां लड़ाई की वजह से पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। वर्ष 2011 के बाद से अब तक 56 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच सीरिया के लिए नए संविधान का मसौदा तैयार करने पर संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में बुधवार को काम शुरू हो गया। सीरियाई सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि 9 साल में पहली बार आमने सामने बैठकर देश के भविष्य पर विचार विमर्श करेंगे। सीरिया के लिए यूएन के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वर्षों से पीड़ा झेल रहे नागरिकों को राहत प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में आम लोग अब भी बहुत सी बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारत प्रशासित कश्मीर में स्थिति को मुक्त करने और लोगों के अधिकार पूरी तरह बहाल किए जाने का आग्रह भी किया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपनी अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की अपील, भारत सरकार द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले के बाद वहां पैदा हुए तनावपूर्ण हालात के संदर्भ में जारी की गई है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत आंशिक स्वायत्तता हासिल थी। फरवरी 2019 में हुए आत्मघाती हमले के बाद भी क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण स्थिति थी। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त 5 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए कहा था कि इस फैसले के बाद कश्मीर पर भारतीय केंद्र सरकार का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाबंदियां लगा दी गई थी और संचार साधन भी बंद कर दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविले ने मंगलवार को जिनेवा में कहा,
The undeclared curfew imposed by the authorities in the region was lifted from much of Jammu and Ladakh regions within a few days.
भारत प्रशासित कश्मीर के जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के ज्यादातर इलाकों से अघोषित कर्फ्यू तो कुछ ही दिनों के भीतर हटा लिया गया था, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार ये अघोषित कर्फ्यू कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में तो अब भी जारी है। इसके तहत लोगों के मुक्त आवागमन पर पाबंदियां हैं, लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने के अधिकारों का हनन हो रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म व आस्था के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविले के शब्द।
प्रवक्ता ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के आरोपों की तरफ भी ध्यान दिलाया, जिसमें पैलेट फायर करने वाली बंदूकों, आंसू गैस और रबर की गोलियों के इस्तेमाल शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को ऐसी खबरें भी मिली हैं कि भारत प्रशासित कश्मीर में सशस्त्र गुटों ने कुछ ऐसे लोगों को धमकियां दी हैं जो या तो कामकाज करने या स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रवक्ता का कहना था कि खबरों के अनुसार 5 अगस्त के बाद से ही हथियारबंद गुटों के सदस्यों के कथित हमलों में कम 6 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हुए हैं। लैंडलाइन टेलीफोन पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं और एक सरकारी कंपनी ने मोबाइल फोन सेवाएं भी आंशिक रूप से शुरू कर दी हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसक संघर्ष के दौरान होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम करने और उससे निपटने के लिए 10 वर्ष पहले एक नए कार्यालय की स्थापना की थी। यूएन उप प्रमुख आमिना जे मोहम्मद ने उस मैंडेट के 10 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसे अपराधों की रोकथाम करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए संकल्प का होना बेहद आवश्यक है। यूएन उप महासचिव ने कहा कि 2009 के आदेश पत्र यानी मैंडेट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उथल पुथल और हिंसा के दौरान होने वाली यौन हिंसा मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भयावह उल्लंघन है। उनके मुताबिक इस आदेश पत्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा युद्ध के दौरान बलात्कारों का अंत करने और जीवित बच गए पीड़ितों के सामाजिक चरित्र हनन की रोकथाम करने के लिए गहन प्रयास किए गए। हिंसक संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को सुरक्षा और समावेशी शांति के लिए खतरा करार दिया गया। यूएन उप महासचिव ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, जांच प्रक्रिया के ढांचों और विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय की स्थापना का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में यौन हिंसा पीड़ितों की मांगों के मद्देनजर एक वैश्विक मानदंड फ्रेमवर्क और संस्थागत व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। हिंसक संघर्ष में यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने इस अवसर पर बुधवार को एक नए ग्लोबल फंड फॉर सर्वाइवर्स की आधिकारिक शुरुआत की। विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया भर में पीड़ितों से मुलाकात करने के दौरान बातचीत में दो मांगें प्रमुखता से उभर कर सामने आती हैं, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को जीवन फिर से शुरू करने के लिए सहायता व समर्थन मिले। पीड़ितों को सबसे अधिक मुआवजे की आवश्यकता होती है, लेकिन यही उन्हें सबसे कम मिलता है। इस कोष के जरिए दुनिया भर में हिंसक संघर्षों में यौन हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। विश्व की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 3.90 अरब लोग अब शहरों में रहते हैं और वर्ष 2050 तक ये संख्या 2 गुना होने की संभावना है। बढ़ते शहरीकरण से नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, लेकिन शहर भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका भी निभा सकते हैं। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के अवसर पर यही रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
इस वर्ष विश्व शहर दिवस की थीम चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस रखी गई है, जिसका उद्देश्य इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन के जरिए दुनिया में बदलाव लाना और भावी पीढ़ियों के लिए शहरों में जीवन बेहतर बनाना है। टिकाऊ शहरों के निर्माण में तकनीक और युवाओं की भूमिका को अहम बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने ग्लोबल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 66 नए शहरों को शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब इस नेटवर्क में कुल 246 शहर हो गए हैं। सूची में शामिल नए शहरों में मेरिडा और क्वेरेतारो, लाहौर, मुंबई, कार्लसरूहे, पोट्सडम, सैन होसे, वेलिंगटन प्रमुख हैं। इस नेटवर्क में उन शहरों को जोड़ा जाता है जहां विकास उनकी सृजनात्मकता जैसे संगीत, कला, डिजाइन, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल कला या पाक कला पर आधारित होता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि शहरों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय जो निर्णय आने वाले दशकों में लिए जाएंगे उनका निर्णायक प्रभाव कार्बन उत्सर्जन पर पड़ेगा। निस्संदेह जलवायु परिवर्तन से लड़ाई शहरों में ही जीती या हारी जाएगी। बिजली चालित सार्वजनिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर कचरा प्रबंधन को अपनाकर शहर इनोवेशन यानी नवप्रवर्तन और सृजनात्मकता का केंद्र बने हैं और युवा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं।
पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के स्पष्ट फायदे हैं और मौजूदा दौर की कार्रवाई ही महासागरों और पृथ्वी के बर्फ से ढके क्षेत्र यानी क्रायोस्फेयर का भविष्य तय करेगी। ये कहना है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंजल प्रकाश का, जिन्होंने हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की ओर से जारी की गई नई रिपोर्ट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर अंजल प्रकाश ने सचिन गौड़ के साथ खास बातचीत में IPCC की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
यहाँ पे दो चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जो ओशियन सिस्टम है हमारा, वो ओशियन सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जो कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण, और जो हमारा जो पोल्यूशन लेवल है इसके कारण जो कार्बन सिंक कर रहा है वो ओशियन सिस्टम उसको कैच करता है, तो उसके कारण जो है ओशियन सिस्टम है वार्म्ड अप। लास्ट सेंचुरी में हमारा ओशियन सिस्टम अबाउट 0.8 डिग्री गर्म हो गया है। नाउ ये गर्म जब होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो होगा वो फिश प्रोडक्शन में होगा, जो मछलियों की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो घटेगी। दूसरा ये होता है कि इसके कारण साइक्लोन जो इम्पैक्ट होता है, साइक्लोन होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही देख रहे हैं कि ये सिस्टम्स जो है चेंजेस आ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा। दूसरी बात की जो हमारा जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा क्रायोस्फीयर है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो क्रायोस्फीयर भी ये जो गर्मियों के कारण वो पिघलने लगा है, बर्फ पिघलने लगी है। ये जो बर्फ है, ये बर्फ कितने सालों से, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में से वो फॉर्म हुआ है, और ये मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। और इस पिघलने से क्या होता है कि जो पानी का जो बहाव है नदियों में वो बहुत चेंज करेगा, तो आप समझिए कि गर्मियों के समय में जितना पानी आना चाहिए उससे दुगना तिगना पानी आएगा, और उससे फिर समुद्र जो है उसके सतह बढ़ जाएगी, और उससे फिर बहुत सारे जो एरियाज हैं जो कि लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब में आ जाते हैं। तो ये दोनों सिस्टम्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एंड ये रिपोर्ट जो है वो रीएम्फेसाइज करता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन दोनों सिस्टम्स को हम प्रोटेक्ट करें। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे पहली तो बात यह है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देना है बाय एंड ऑफ द सेंचुरी, एंड ये सबसे अहम बात जो है इस रिपोर्ट में आई है।
अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं?
जी, भारत के संदर्भ में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है वो करीब 7,500 किलोमीटर का विस्तार है, और ये तटीय क्षेत्र जिसमें जो लोग रहते हैं वो अबाउट सब, अगर आप पूरे उनकी जनसंख्या देखें तो अबाउट 280 मिलियन लोग जो हैं वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जो कि इमीडिएटली अफेक्टेड होने वाले हैं कुछ भी जो चेंजेस होते हैं जिस सिस्टम में। सबसे पहले तो ये बात है कि जो साइक्लोन है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने वाली है। दूसरी बात की फिश प्रोडक्शन पे असर होने वाला है। तीसरी बात की इससे जो सेलिनिटी है, पानी में जो क्षारीय क्षमता है पानी, खासकर ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है, फिर इसके स्रोत में क्षारीय क्षमता बढ़ने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि पीने का पानी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी का जो है वो बहाव अंदर के अंदर तरफ आने लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत देश के लिए, क्योंकि हम बहुत लंबी कोस्ट लाइन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं इस सिस्टम्स के लिए। अब चले हम हिमालय की तरह, हिमालय जो है हमारा सिस्टम है वहाँ पे भी आप जानते हैं कि 15 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं जिस सिस्टम पे, और इन दोनों सिस्टम्स के जो चेंजेस आने वाले हैं, जो उनमें बदलाव आने वाले हैं, ये बदलाव लोगों के लिए, खासकर जो जो गरीब जनता है उसके लिए बहुत बहुत ज्यादातर मुश्किलात पैदा करने वाली होंगी। यहाँ जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं पानी और इकोसिस्टम सर्विसेज जो है हमारे, जो वातावरण जो उन्हें सर्विसेज देती हैं, जैसे कि जंगल, जल, जमीन है, ये तीनों इससे इफेक्टेड होने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम जो है हम दे रहे हैं कि इंडिया के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रहेगी।
ग्रामीण महिलाएं टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलाव लाने के रास्ते में प्रमुख भागीदार हैं। महाराष्ट्र में तेजस्विनी नामक कार्यक्रम के जरिए लगभग 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया है। इस योजना को कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भी सहयोग दिया। एक रिपोर्ट के साथ शिवानी काला।
सिरों पर किसी ताज की तरह सजी महाराष्ट्र की पारंपरिक पगड़ी फेटा, आत्मविश्वास से भरे चेहरे, कामयाबी की मुस्कान और आंखों में नए सपने, ये महाराष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं की एक नई पहचान है, जिन्होंने घरों की चार दीवारी से निकलकर अपनी नई दुनिया बनाई है। उनकी इस दुनिया में वो खुद सपने देखती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जद्दोजहद करती हैं और जब कामयाबी उनके हाथ लगती है तो अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। इसमें तो कतई शक नहीं है कि ग्रामीण महिलाएं टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलाव लाने के रास्ते में प्रमुख भागीदार हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल व्यक्तियों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों की भलाई के लिए अहम है, बल्कि संपूर्ण आर्थिक उत्पादकता के लिए भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र महिला विकास निगम द्वारा चलाए गए तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में ठोस शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD से भी वित्तीय सहायता मिली है। ये कार्यक्रम स्व सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने और वित्तीय सेवाओं, कृषि तकनीकी परीक्षण, साक्षरता परीक्षण और व्यवसाय योजना व विकास में भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं की प्रगति का रास्ता दिखाता है। IFAD के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ हुगुम्बो ने महाराष्ट्र में IFAD द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम व गतिविधियों का दौरा किया, जो कि पहले ही 10 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक रहा है। मंजुला गुरुनाथ पाटिल ऐसी ही एक महिला हैं जो एक डेयरी किसान है और जिन्हें इस परियोजना से लाभ मिला।
महिला ये चार भिंतियार गुतलेली होती, सुलित मुलात गुतलेली होती गटाला।
इससे पहले विवाहित महिलाएं घर की दीवारों तक ही सीमित थीं। स्व सहायता समूह में शामिल होने के बाद ही मैंने महसूस किया कि उन चार दीवारों से परे भी एक जीवन है और मुझे अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। हुगुम्बा का मानना है कि हम सही राह पर हैं, लेकिन हमारे पास जो चुनौती है वो है न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत और भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर सक्षम होना है।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, पता है news.un.org/hi। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।